الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی من کان نبیا و آدم بین الماء والتین وعلى آلہ و اصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد صلاۃ دائمۃ بدوام الملک الحی القیوم۔ آج کی ہماری اس نشست کا عنوان ہے حسد۔ حسد ایک روحانی بیماری کا نام ہے، جس طرح جسمانی بیماریاں ہیں اسی طرح روحانی بیماریاں بھی ہیں۔ انہی روحانی بیماریوں میں سے ایک حسد ہے، اور یہ ایسی خطرناک بیماری ہے کہ جو انسان کے نیک اعمال کو ضائع کر دیتی ہے، بالکل ختم کر دیتی ہے۔ اس لیے اس سے بچنا بہت ضروری ہے۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کسی بیماری سے بچنے کے لیے پہلے اسے سمجھنا ضروری، ڈائگنوز کرنا ضروری۔ جب آپ کو پتا ہوگا کہ یہ بیماری ہے تبھی آپ اس سے بچیں گے۔ اگر آپ کو معلوم ہی نہیں کہ آپ کے جسم میں کوئی بیماری ہے تو کیسے اس سے بچیں گے، اس کا علاج کس طرح کریں گے؟ تو پہلی چیز اس بیماری کو ڈائگنوز کرنا، اس کو سمجھنا کہ کون سی بیماری، پھر دوسری چیز اس کا علاج۔ اب سائنس نے ترقی کی، اور اتنی ترقی کی کہ بہت سی بیماریوں کا علاج دریافت کر لیا، اور ایسی لا علاج بیماریاں جن کا علاج ممکن ہی نہیں تھا، جیسے کینسر اور پہلے زمانے میں ٹی بی، لیکن اب الحمدللہ ان کا علاج ممکن ہے۔ اور ابھی بھی بہت سی بیماریاں ایسی ہیں کہ جن کا پتہ ہی نہیں لگتا کہ بیماری ہے، جب آپ کوئی ٹیسٹ کرتے ہیں، ٹیسٹ کراتے ہیں، تب جا کے پتہ چلتا۔ تو پہلی چیز کیا ہے کہ بیماری کو سمجھنا، اور دوسری چیز اس کا علاج کرنا۔ اب سائنس نے ترقی کر کے جسمانی بیماریوں کا علاج دریافت کر لیا، لیکن یہ روحانی بیماریاں جو ہیں ان کا علاج کون کرے؟ کیا کوئی ایسی دوا موجود ہے جو انسان کے دل سے حسد کو ختم کر دے؟ کیا کوئی ایسی ٹیبلٹ، کوئی ایسا کیپسول موجود ہے کہ کسی انسان کو کھلا دیا جائے، حسد ختم ہو جائے، بغض ختم ہو جائے، عداوت ختم ہو جائے؟ ہے ایسی کوئی دوا؟ ایسی کوئی دوا نہیں۔ تو جب ایسی کوئی دوا نہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان روحانی بیماریوں کا علاج نہیں۔ آپ کہیں گے نا، جب کوئی دوا نہیں ہے تو علاج ہی نہیں، لیکن ایسا نہیں ہے۔ جس طرح آج جسمانی بیماریوں کا علاج ممکن ہے، اور سائنس نے ترقی کر کے لا علاج بیماریوں کا علاج منتخب کر لیا، اسی طرح آج سے 1400 سال پہلے طبیب انسانیت، فخر کائنات، فخر موجودات صلی اللہ علیہ وسلم نے ان بیماریوں کی نہ صرف نشاندہی فرمائی بلکہ علاج بھی بتا دیا، اس کے اسباب بھی بتا دیا۔ ڈاکٹر کا کام یہی ہے نا کہ بیماری کو ڈائگنوز کرتا ہے، اس کے اسباب بتاتا ہے، اس کے پرہیز بتاتا ہے، اس کا علاج بتاتا ہے۔ اور اگر آپ پرہیز نہ کریں، خالی علاج کریں، فائدہ نہیں ہو۔ دوا کھاتے رہے، ٹھنڈا پانی پیتے رہے، کھٹی چیزیں کھاتے رہے، نزلہ زکام دور ہوگا؟ نہیں۔ علاج بھی کرو، ساتھ میں پرہیز بھی کرو، دونوں چیزیں ہیں، تب مرض دور ہوگا، افاقہ ہوگا، فائدہ ہوگا۔ تو طبیب انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے اس بیماری کی نشاندہی بھی فرما دی، اس کا علاج بھی बता दो। अब हम बीमार हैं रूहानी तौर पर, तो हमें चाहिए कि हम उसी दवा को इस्तेमाल करें जो आका तो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया, उसी इलाज को करें जो नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बताया, वरना इस बीमारी का इलाज मुमकिन नहीं। और ये ऐसी बीमारी है जिसमें सब मुब्तला है, इरादतन या गैर इरादी तौर पर। यानी हम ये समझ नहीं सकते कि हम हसद कर रहे हैं, हसद दिल के अंदर पैदा हो गया, अपने मुसलमान भाई से हसद कर रहे हैं, अपने सगे भाई से हसद कर रहे हैं, अपने अजीज और रिश्तेदारों से हसद कर रहे हैं, और हमें पता ही नहीं बीमारी हमारे अंदर मौजूद है। और ये हसद आहिस्ता आहिस्ता नेकियों को खा रही है, खत्म कर रही है। कितनी खतरनाक बीमारी कि एक तरफ आप नेक अमाल कर रहे हैं, नमाज, रोजा, हज, जकात, सदकात, खैरात, जितने भी नेक अमल हैं वो सब आप कर रहे हैं, और दूसरी तरफ किसी मुसलमान से हसद भी कर रहे हैं। तो क्या हुआ, इधर जो नेक अमाल कर रहे थे उधर जो हसद हुई, हसद ने उस चीज को खा लिया, खत्म कर दिया, तो क्या फायदा हुआ फिर उन नेक अमाल। इसलिए इस बीमारी को समझना जरूरी है, इसके असबाब को समझना जरूरी है और इसका इलाज जरूरी है। तो अब याद रखिए, आज की नशिस्त में हम तीन चीजें आपके सामने बयान करेंगे। कितनी चीजें? तीन। पहली चीज बीमारी, हसद क्या है बीमारी उसको समझना। दूसरी चीज इसके असबाब क्या हैं, ये बीमारी पैदा क्यों होती। और तीसरी चीज क्या चीज? इलाज। यही सबसे अहम चीज है। आपने बीमारी को समझ लिया, असबाब को समझ लिया, इलाज को नहीं समझा, क्या फायदा होगा? इलाज नहीं होगा बीमारी फिर पैदा होगी, बल्कि बीमारी फिर क्या वो बाकी रहेगी, खत्म ही नहीं होगी। तो आप सबसे पहले समझे कि बीमारी क्या है। हम कहते रहते हैं ये आदमी हसद करता है, वो हसद करता है, दोस्त मुझसे हसद करते हैं, ये हासिद है, ये दुश्मन है। कभी ये समझा कि हसद है क्या, हसद किसे कहते हैं? बड़े गौर से सुनिए, अल्लामा इमाम राग़िब इस्फ़हानी मुफ़रिदात में फरमाते हैं, जिस मुस्तहिक शख्स के पास नेमत हो उससे नेमत के जवाल को हसद कहते हैं। जिस मुस्तहिक शख्स के पास नेमत हो उससे नेमत के जवाल को हसद कहते हैं। अभी मैं पहले उनकी इबारत पूरी पढ़ूं, फिर आपको आसान करके बताऊंगा। फिर आगे फरमाते हैं, रिवायत है कि नेक आदमी रश करता, मोमिन रश करता है, मुनाफिक हसद करता। मोमिन रश करता है, मुनाफिक हसद करता है। और कुरान करीम में अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है, मिन शर्र हासिद इज़ा हसद, जब हासिद हसद करे तो उनके शर से मैं तेरी पनाह मांगता हूं। किसकी? अल्लाह ताला की पनाह मांग रहा है। अल्लाह ताला हमें सिखा रहा है, तुम ये पढ़ो, मिन शर्र हासिद इज़ा हसद, पढ़ते हैं ना सूरह नास में, सूरह फलक में, दोनों सूरतों में मौजूद, मिन शर्र हासिद इज़ा हसद, जब हासिद हसद करें मैं उनके हसद से तेरी पना मांगता हूं। हम अल्लाह की तरफ इशारा करें, मौला तेरी पना मांगता हूं हासिदों के हसद से, उनके शर से। ये तो इमाम राग़िब इस्फ़हानी की बात, ये बिल्कुल उनके अल्फाज। अब आइए इसको जरा सा और आसान कर दूं। उन्होंने क्या कहा, हसद की तारीफ क्या की, जिस मुस्तहिक शख्स के पास नेमत हो उससे नेमत के जवाल को हसद कहते हैं। मिसाल के तौर पर एक आदमी के पास कोई नेमत है, मसलन वो किसी ओहदे पर है, किसी मनसब पर है, या कोई भी नेमत, एक गाड़ी आप ले लें, कोई बंगला ले लें, कोई चीज उसके पास है। अब दिल में क्या पैदा हुआ, मौला इससे ये चीज छिन जाए, इससे ये चीज जाहिल हो जाए, छिन जाए, यही हसद है। समझ गए बात, मैंने बिल्कुल आसान कर दी। ये नेमत इससे जाहिल हो जाए, छिन जाए, दिल के अंदर उसको देखकर ये चीज पैदा हुई। क्यों? क्या आपके पास नहीं? मेरे पास गाड़ी नहीं है, इसके पास गाड़ी है, इससे छिन जाए, इससे नेमत जाइल हो जाए, यही हसद है। अब गाड़ी की तो मैंने एक मिसाल दी, कोई भी चीज हो और उसके मुताबिक ये चीज पैदा हो जाए वही हसद है। लेकिन रश वो मुख्तलिफ है। रश क्या है? मोमिन रश करता है, मुनाफिक हसद करता है। रश क्या है? मौला इसके पास जो नेमत हो वो इसके पास रहे, लेकिन इसकी मिसल मुझे भी मिल जाए, ये रश है। इसके पास जो नेमत हो इसके पास रहे, जाहिल ना हो, मुझे भी उसकी मिसल मिल जाए। और अल्लाह ताला इस बात पर कादिर है या नहीं कि उसकी मिसल दे दे? उसके खजाने में कोई कमी है? नहीं, वो दे सकता है। अब समझ गए ना, रश और हसद दोनों में फर्क। हसद ये कि इसके पास से जाहिल हो जाए, और रश का इसके पास से जाहिल ना हो उसकी मिसल मुझे भी अता कर। सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन आपस में हसद नहीं करते थे, रश करते थे एक दूसरे पर। और उनकी तो बात ही क्या थी, दुनियावी मामला तो अलग थे, वो इबादत में, तकवे में, परहेजगारी में, खौफ खुदा में, अल्लाह की राह में माल खर्च करने में, इसमें रश करते, इसमें रश करते थे। मशहूर वाकया जंगे तबूक के मौके पर सरकार ने ऐलान फरमाया, जिसके पास जो कुछ था उसने लाकर पेश कर दिया। सैयदना फारूक आजम रजी अल्लाह तआला कहते हैं, मैंने घर का आधा माल हुजूर की बारगाह में पेश कर दिया और मैं बड़ा खुश हो रहा हूं कि आज मैं सिद्दीक अकबर से बढ़ गया रजी अल्लाह तआला। देखो, नेकी के कामों में सबकत कर रहे, दुनियावी कामों में नहीं, अल्लाह की राह में देने में सबकत कर रहे। और हमारा हाल क्या है? हम बखील हैं, हम खर्च करने में बुखल का मुजाहरा, बचा लो माल को, बचा लो, खर्च ना करो। और उनकी शान क्या है? माल अल्लाह की राह में खर्च करने में, कहते मैं खुश हो गया, आज मैं सिद्दीक अकबर से आगे बढ़ गया, मैंने आधा माल हुजूर की बारगाह में पेश कर दिया। और जब आधा माल लेकर आए तो सरकार ने क्या फरमाया? मा तरकता लिअहलिका या उमर, उमर घर वालों के लिए क्या छोड़ा? या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, घर वालों के लिए आधा माल और आधा आपकी बारगाह। फरमाया ठीक है बैठ। अब आए आशिक रसूल सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह तआला, इन्होंने क्या किया? कुल का कुल माल सब उठाकर बांधकर हुजूर की बारगाह। सरकार ने देखा, हल तरकता लिअहली का या अबा बकर, अबू बकर घर वालों के लिए भी कुछ छोड़ा? अब देखो, जुमले ने ही बता दिया, हुजूर के इल्मे गैब पर दलील देखो, दोनों जुमलों में फर्क देखो। हजरत उमर रजी अल्लाह तआला ने आधा माल छोड़ के और आधा लेकर आए तो हुजूर ने क्या फरमाया? मा तरकता लिअहली का या उमर, उमर घर वालों के लिए क्या छोड़ा? यानी सरकार को बताए कि आधा छोड़कर आए और आधा लेकर आए। जुमले पे गौर कीजिए, घर वालों के लिए क्या छोड़ा? और जो सारा का सारा माल ले आए सिद्दीक अकबर, तो फरमाते हैं हल तरकता लिअहली का या अबा बकर, ए अबू बकर क्या घर वालों के लिए भी कुछ छोड़ा? जुमले ने ही बता दिया, सरकार के जुमले ने बता दिया, हुजूर जानते हैं ये आधा छोड़कर आ रहे हैं, ये सब कुछ लेकर आ रहे हैं। का घर वालों के लिए अल्लाह उसका रसूल का जुमले ने बता दिया। तो फारूक आजम ने कहा, मैंने कहा सोचा मैं नहीं बढ़ सकता, मैं इनसे आगे नहीं बढ़ सकता। कुर्बान जाइए नफूस कुदसिया के, एक दूसरे पर रश कर रहे हैं, हसद नहीं कर रहे, ये मुझसे क्यों आगे बढ़ रहे? नहीं, मौला जैसे सिद्दीक अकबर ने किया है मुझे हिम्मत दे, मैं भी ऐसे करता, मैं तो आधा माल छोड़कर आई तो सारा के सारा ले। परवाने को चरा तो बुलबुल को फूल, बस सिद्दीक के लिए है खुदा का रसूल, बस सब छोड़कर आ गए। अब क्या हुआ? तो बात कहां से चली? रश और हसद। बात समझ में आ गई ना? किसी के लिए ये सोचना कि ये नेमत इसके पास से जाइल हो जाए, ये हसद है। और ये सोचना कि नेमत उसके पास रहे, मौला इसकी मिसल मुझे मिल जाए, ये क्या है? रश है। तो मोमिन रश करता है, मुनाफिक हसद करता। अब क्या बनोगे? मोमिन। तो हसद करना छोड़ो। अब आइए, इस बीमारी जिसको हमने रूहानी बीमारी कहा, हसद जो हकीकत में रूहानी बीमारी है, इसके मुताल्लिक नबी पाक अलैहिस्सलाम की चंद अहादीस। हजरत अबू हुरैरा रदी अल्लाह ताला अन्हु इस हदीस के रावी हैं, फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हसद से बचो, क्योंकि हसद नेकियों को इस तरह खा जाता है जिस तरह आग सूखी लकड़ियों और घास को खा जाता है। कहीं सूखी लकड़ियां रखी हो, घास हो, आप आग लगा दें, जलने में कितनी देर लगेगी? चंद मिनटों में खत्म, चंद मिनट में खत्म। यही मिसाल हसद की। जो हसद करता है उसकी नेकियां इतनी जल्दी खत्म होती हैं जैसे आग लकड़ी और सूखी घास को खा जाता, इस तरह नेकियां खत्म होती। एक हदीस इमाम तिबरानी रिवायत करते हैं कि हजरत जमरा बिन सानबा रदी अल्लाह ताला ने बयान किया कि नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, जब तक लोग हसद नहीं करेंगे वो खैरियत से रहेंगे। आपस में हसद नहीं करेंगे, खैरियत से रहेंगे। क्या मतलब? जब हसद करना शुरू कर देंगे खैरियत खत्म हो जाएगी, और जब खैरियत खत्म होती है तो क्या होता है? मुसीबतें आती हैं, परेशानी आती हैं, सारी चीजें पैदा होती हैं। दूसरी हदीस। तीसरी, हजरत जुबैर रदी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, पहली उम्मतों की बाग बीमारियां तुम में सरायत कर गई। पहली उम्मत जो गुजरी हैं उनकी बाग बीमारियां तुम में सरायत कर गई हैं, जैसे हसद और बोझ। फिर फरमाया, बुग्ज मूंदने वाला है। मैं ये नहीं कहता कि वो बालों को मूंदता है, लेकिन वो दीन को मूंदता है। बाल मूंदते हैं ना, साफ कर देते, खत्म हो जाता। तो फरमाया, हसद दीन को मूंदता है। क्या मतलब? जो हसद करता है दीन साफ हो जाता। कितनी खतरनाक बीमारी। तीसरी हदीस हजरत अनस बिन मालिक रदी अल्लाह ताला ने बयान फरमाते हैं, एक दिन हम हुजूर पुर नूर सैयदुल आलमीन मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बैठे थे। सरकार ने फरमाया, अभी तुम्हारे पास अहले जन्नत में से एक शख्स आएगा, अहले जन्नत में से एक शख्स आएगा। अहले जन्नत कौन है? जन्नत में रहने वाले। अहले जन्नत का मतलब यही है ना। अभी जन्नत मिली नहीं, सरकार पहले से बता रहे हैं अहले जन्नत में से एक शख्स आएगा। ये कहते हैं हुजूर जानते नहीं, हमारा अकीदा जानते हैं, जब भी तो बता रहे हैं अहले जन्नत में से आएगा। कितने लोग बैठे, किसी को पता है कोई जन्नत ही है? किसी को नहीं पता। हुजूर फरमा रहे हैं अभी आएगा वो अहले जन्नत में। ये शान है नबी पाक अलैहिस्सलाम। वो कहते हैं कि फिर हमने देखा कि एक शख्स आया, उसकी दाढ़ी से वुजू का पानी टपक रहा था, और उसके बाएं हाथ में उसकी जूतियां थी। दूसरे दिन फिर नबी पाक अलैहिस्सलाम ने यही जुमला फरमाया कि आज अहले जन्नत में से एक शख्स आएगा, फिर वो ही आया। तीसरे दिन हुजूर ने फिर यही जुमला फरमाया, फिर वही आया। यानी तीन दिन तक हुजूर अलैहिस्सलाम ने एक ही जुमला फरमाया, आज तुम्हारे पास अहले जन्नत में से एक शख्स आएगा, और वही आया, कोई और नहीं आया। और वही कैफियत थी, उसकी दाढ़ी से वुजू का पानी टपक रहा था और उसके बाएं हाथ में जूतियां थी। सिर्फ ये जुमला फरमाया, और कोई उसका अमल या और उसकी कोई तारीफ, कोई वजाहत सरकार ने नहीं फरमाई। अहले जन्नत में एक शख्स आएगा, बस। अब क्या हुआ? हजरत अब्दुल्लाह इब्ने उमर रदी अल्लाह ताला तीन दिन उस शख्स के साथ रहे। जब ये जुमला सुना ना, तो उनको यकीन हो गया सरकार ने फरमाया अहले जन्नत में से यकीनन ये जन्नती होगा। तो मैं देखूं कि ये कौन सा ऐसा अमल करता है जिसकी वजह से इसको 3 मरतबा जन्नत की बशारत मिली, यानी 3 दिन सरकार ने फरमाया और यही आया और कोई नहीं आया। तो हजरत अब्दुल्लाह इब्ने उमर रजी अल्लाह ताला अन्हुमा 3 दिन उस शख्स के साथ रहे उस अमल को मालूम करने के लिए जिसकी वजह से उसे 3 मरतबा जन्नत की बशारत मिली। तो उन्होंने क्या देखा कि वो शख्स रात को कयाम के लिए नहीं उठता था, यानी रात को तो सो जाता लेकिन अल्लाह का नाम लेकर सोता था, अल्लाह का नाम लेकर उठता था, बस ये अमल देखा। उन्होंने कहा कि ये तो कोई ऐसा अमल, 3 मरतबा जन्नत की बशारत मिल गई। उसके बाद हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर फरमाते हैं कि मैंने इन 3 दिनों में उसकी जबान से खैर के सिवा कोई जुमला नहीं सुना। खैर के सिवा का मतलब यह है कि किसी की बुराई, किसी की चुगली, गीबत, झूठ, ये सारी चीजें हैं ना, ये शर में आती हैं। तो खैर के सिवा यानी बेहतर ही बात उसने की, खैर के सिवा कोई बात नहीं। अच्छा, जब 3 दिन गुजर गए और इन्होंने कोई और ऐसा अमल नहीं देखा तो ये वापिस जाने लगे। जब ये जाने लगे तो इन्होंने कहा, किसने, हजरत अब्दुल्लाह इब्ने उमर रदी अल्लाह ताला अन्हुमा ने फरमाते, मैंने उससे पूछा कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तुम्हारे मुताल्लिक 3 मरतबा जन्नत की बशारत सुनी लेकिन मैंने तुम्हारे अंदर कोई गैर मामूली बात नहीं देखी। यानी मैं 3 दिन तुम्हारे साथ रहा और मैंने कोई ऐसी बात तुम्हारे अंदर नहीं देखी। ये मालूम करना चाहते थे कि वो कौन सा अमल है जिसकी वजह से अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने 3 मरतबा जन्नत की बशारत दी। तो जब उससे पूछा आखिर वो कौन सा अमल है, उसने कहा वही अमल जो आपने देखा है। उसके बाद जब ये जाने लगे तो उसने आपको आवाज दी और कहा वो अमल मेरे दिल में किसी मुसलमान के खिलाफ कीना नहीं है और जिस किसी मुसलमान को अल्लाह ने कोई नेमत दी हो मैं उस पर हसद नहीं करता। बस ये बात, किसी मुसलमान के खिलाफ मेरे दिल में कीना नहीं है, बुग्ज, अदावत, नफरत, कीना कुछ नहीं, और अल्लाह ने किसी को कोई नेमत दी हो मैं हसद नहीं करता। तो हजरत अब्दुल्लाह इब्ने उमर ने जब ये सुना फरमाया यही अमल है जिसकी वजह से सरकार ने 3 मरतबा तेरे लिए जन्नत की बशारत। अब इससे क्या पता चला कि हमें ये चाहिए कि हम अपने दिल को बुग्ज़ से, अदावत से, नफरत से, कीने से पाक कर दें, साफ कर लें। किसी मुसलमान के लिए कीना हमारे दिल में हो, नफरत हो, अदावत हो, सबको निकाल दें, पहली चीज। और दूसरी चीज, किसी के पास कोई नेमत हो उसको देखकर हसद ना करे, इसके पास से जाहिर हो जाए, हसद ना करे। अल्लाह की तकसीम है, उसने दी है, उसका करम है। जब वो देने वाला मौजूद है तो इतराज करने वाले कौन। लेकिन ये चीज आज माशरे में मौजूद है, किसी को देखा इसके पास गाड़ी है, इसके पास बंगला है, ये ऊंचे ओहदे पर है, ये मनसब पर है, या मालो दौलत है, कोई चीज है, फौरन हसद शुरू, इसके पास क्यों है, हमारे पास क्यों नहीं है, उसने मेहनत की है तो तुम भी मेहनत करो, वो कोशिश करके इस मकाम पर पहुंचा है तो तुम भी कोशिश करो, नहीं, हसद, इसके पास से ये नेमत छिन जाए, ये जाहिर हो जाए और कहते मुझे मिल जाए, मैं ले लूं सारी नेमत। और बात क्या करते हैं, अक्सर लोग आते हैं, देखें साहब वो हमारे एक रिश्तेदार हैं, एक अजीज है, उनके पास 2 मकान हैं, हम किराए में रह रहे हैं, अगर एक हमें दे देंगे तो क्या हो जाएगा, अगर हमें दे दें तो क्या हो जाएगा, 2 मकान है, ऐसा लगता है कि इन्होंने रखवाया है उसके पास, भाई उसकी मिल्कियत है वो दे या ना दे, तुम्हें क्या जरूरत है, उसकी मिल्कियत है ना, उसका हक है उसके ऊपर, उसकी मर्जी, वो दे या ना दे, अगर वो दे दे तो उसका एहसान है, और अगर नहीं दे रहा तो देखें से आराम से रह रहे, हम तो मर रहे, हम तो किराया दे दे के मर गए, वो आराम से अपने मकान में रह रहे। ये गलत है। किसी को अल्लाह ने कोई नेमत दी है, कभी उस नेमत को देखकर हसद मत करो, कभी हसद मत करो। अल्लाह से दुआ करो, मौला जैसा उसको दिया है उसकी मिसल मुझे भी अता कर, उसको और मजीद दे दे, उसको मजीद अता कर दे। इसलिए कि अल्लाह तबारक व तआला कभी ना इंसाफी नहीं करता, हर एक के साथ इंसाफ करता है। उसने जिसको जो चीज दी है उसकी अता है, उसकी अता है, वो मालिक है, मुख्तार है, खालिक है, राजिक है, उसको कोई रोकने वाला नहीं है। जिसे चाहा उसने अता कर दिया, जिससे चाहा छीन लिया। और याद रखो, जैसे वो देना जानता है ऐसे लेना भी जानता है। जिनके पास है वो मत समझे कि हमारे पास है तो कयामत तक रहेगा, मरते दम तक हम ऐसे ही रहेंगे। एक रात में बादशाह फकीर हुए, एक रात में बादशाह फकीर हुए, और एक रात में तख्त से तख्ता, तख्त पर, दूसरी रात में तख्ते पर, दार पर। क्या है ये सब? कुदरत के खेल। वो दिखाता है, ये मत समझना कि आज हमने तुम्हें इख्तियार दे दिया, तुम्हें इख्तदार दे दिया, तुम फिरौन बन गए, ये सब कुछ तुम्हारे हाथ में है। नहीं, एक जात है ऊपर जिसके दस्ते कुदरत में सब कुछ है, वो जब चाहे जो चाहे कर सकता है, उसे कोई रोकने वाला नहीं। इसी चीज को इंसान भूल जाता। कुरान ने कहा इन्नल इंसान लफी खुसर, बेशक इंसान खसारे में है। इसीलिए खसारे में है, इस बात को समझता ही नहीं है। अल्लाह की तकसीम पर राजी नहीं है। अगर अल्लाह की तकसीम पर राजी हो जाए, मामलात सारे खत्म हो जाए, तवक्कुल पैदा हो जाए, उसकी जात पर भरोसा पैदा हो जाए। लेकिन हम ये नहीं करते, हम एक दूसरे से हसद करते हैं। इसके पास माल है, हमारे पास नहीं है, इसके पास कुएं छिन जाए, खत्म हो जाए। और यही हसद हमारी नेकियों को खत्म करते, नेक आमाल खत्म, और हमें पता भी नहीं एक दूसरे से हसद करते। तो ये हदीस शरीफ जो हजरत अब्दुल्लाह इब्ने उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो जो उसके साथ रहे, उस आदमी के साथ कि नबी पाक अलैहिस्सलाम ने तीन मर्तबा जिसे बशारत दी। पहले दिन फरमाया अहले जन्नत में से एक शख्स आएगा, वही शख्स आया। दूसरे दिन फरमाया, तीसरे दिन फरमाया, तीनों दिन वही शख्स आया। और उसका अमल क्या था? उसके दिल में किसी के लिए कीना नहीं था, और वो किसी से हसद नहीं करता। यहीं से पता चला, अगर ये दो चीजें हम अपने दिल में पैदा कर ले, अपने अंदर पैदा कर ले, इंशाअल्लाह अहले जन्नत में से हो जाए, अहले जन्नत में से हो जाए। कोशिश तो करनी चाहिए ना, जन्नती होने की कोशिश करनी चाहिए। वैसे तो आप सारे जन्नती माशाल्लाह, जब भी तो यहां बैठे, जहन्नम की यहां गुंजाइश ही नहीं। हजरत अब्दुल्लाह इब्ने उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि नबी पाक अलैहिस्सलाम से पूछा गया सबसे अफजल कौन, सवाल किया। सरकार ने फरमाया जो मखमूमुल कल्ब और रास्त गो हो। मखमूमुल कल्ब और रास्त गो, यकीनन सबके सर पे से गुजर गया हो। सहाबा ने अर्ज किया या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रास्त गो को तो हम जानते हैं, लेकिन मखमूमुल कल्ब ये कौन है? रास्त गो को तो हम जानते हैं ना भाई, सच बोलने वाला, सीधा, बिल्कुल सीधी बात करने वाला, लेकिन मखमूमुल कल्ब ये कौन है? अब सुनो आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया। आपने फरमाया जो शख्स मुत्तकी हो और साफ दिल हो, उसने कोई गुना और सरकशी ना की हो, वो किसी से कीना रखता हो ना हसद रखता हो, वही मखमूमुल कल्ब। समझ गए? मुत्तकी हो, साफ दिल हो। साफ दिल का मतलब क्या है? कि उसके दिल में किसी के लिए बुग्ध ना हो, अदावत ना हो, नफरत ना हो, कीना ना हो, हम एक दूसरे के लिए कीना रखते हैं, अदावत रखते हैं, नफरत रखते हैं। मखमूमुल कल्ब नहीं। मखमूमुल कल्ब उस वक्त हो गए, मुत्तकी बन जाओ, दिल को साफ कर लो, गुनाह सरकशी से अपने आप को बचा लो और किसी से न कीना रखो ना हसद रखो, मखमूमुल कल्ब हो जाओ। तो इस हदीस शरीफ के मुताबिक सबसे अफजल वही है। अब ये चीजें तो आपने सुन ली, हदीस तो बहुत है, मैंने सिर्फ 3-4 हदीसें आपके सामने पेश की। अब आइए एक चीज तो आपके सामने बता दी, हसद की तारीफ, हसद क्या है अहादीस की रोशनी में, हसद करने वाले का अंजाम और न करने वाले को जो नतीजा समरा मिलता है वो हमने बता दिया। अब इसके असबाब, हसद पैदा कैसे हो, हर बीमारी का, हर मर्ज का कोई ना कोई सबब है ना। मसलन जाड़े में ठंडे पानी से नहा लो, क्या होगा, बुखार हो जाएगा। ठंडा पानी पी लिया, नजला हो गया। सबब क्या है, ठंडा पानी। सबब होगा तभी बीमारी होगी ना, और सबब नहीं तो बीमारी कैसे। तो हसद भी एक बीमारी है और इसके सबब क्या है, हमें इसके असबाब देखने चाहिए कि हसद हमारे दिल में कैसे पैदा हुआ। हसद पैदा होता है बुग्ज और अदावत से। अगर आपको किसी से बुग्ज है, नफरत है, अदावत है, हसद पैदा हो जाए। क्यों आपको हसद है, बुग्ज है, अदावत है, अब क्या हुआ, उसके पास कोई नेमत है और आपको उससे बुग्ज है, इसके पास क्यों है, इसके पास नहीं होनी चाहिए, हसद पैदा हो। नफरत है, फौरन हसद पैदा हो जाए, इसके पास क्यों है। दोस्त से कभी हसद नहीं हो, दुश्मन से हो, उससे तो दोस्ती है ना, दोस्त को तो आप और देंगे, दुश्मन इसके पास क्यों है, हसद पैदा हो। दूसरी चीज, आप किसी को कमतर समझते हैं और उसको कोई ऊंचा मनसब मिल जाए, हसद पैदा हो जाए, होता है ना। अब इसकी मिसाल दे दूं ताकि बात आपके समझ में आ जाए। मतलब एक मोहल्ले में सब रह रहे हैं, ठीक है, अब मोहल्ले में रहते हैं, एक दूसरे को जानते हैं, इसने कहां पढ़ा, इसकी तालीम कैसी थी, ये कैसे रहता था, किस तरह खेलता था, किस तरह, सब जानते हैं ना एक दूसरे को, एक ही मोहल्ले में रह रहे हैं, घरों में आपस में आना जाना है, दोस्ती है। वो बेचारा कोई कुन जहन हो, गबी हो बिल्कुल, लेकिन उसने मेहनत की, कोशिश की, पढ़ी, आगे चल के उसको कोई बेहतरीन जॉब मिल गई। अब जब जॉब मिली तो उन्होंने गाड़ी भी दे दी, अब गाड़ी दी तो बंगला भी दे दिया। अब क्या हुआ, उसको देखा, अरे ये तो गली में ऐसे ही फिरता था, ये तो पढ़ने में दिल भी नहीं लगाता था, ये तो क्रिकेट खेलता रहता था, इसको इतना ऊंचा मनसब, अरे ये ऐसे देखा मांगा, ये क्या है, हसद पैदा हुआ या नहीं हुआ। क्या मतलब, जिसको कमतर समझते थे उसको ऊंचा मनसब मिल गया, हसद पैदा हो। तीसरा सबब, अपने हम मनसब, मतलब दो आदमी एक ही होते पर है, एक ही मनसब पर है, दूसरे को ज्यादा फैसिलिटीज मिल गई या आपसे और ऊपर चला गया, हसद पैदा हो। फॉर ये तो मेरे साथ का था, ये मुझसे ऊपर क्यों चला गया, हम दोनों तो साथ पढ़ते थे, ये मुझसे आगे बढ़ गया, हसद, फौरन हसद, है ना। ये सारी चीजें हैं। किसी में कोई कमाल है, उसकी बड़ी तारीफ हो रही है, साहब इसके अंदर ये कमाल है, बेहतरीन लिखता है, ऐसा तो कोई लिखता ही नहीं, बेहतरीन कातिब है या पेंटर है कोई भी, उसके अंदर कमाल है। अब वो बड़ा खुश हो रहा है, मेरे अंदर ये कमाल, अब क्या हुआ, उसके दोस्त ने मेहनत की, कोशिश की, वही कमाल उसके अंदर भी पैदा हो, फौरन हसद शुरू हो जाए, ये तो मेरा कमाल था, इसके अंदर कैसे आ गया, भाई अल्लाह की देन है। ये हैं सारे असबाब हसद के पैदा होने के। आप गौर कर लें, यही असबाब हसद के पैदा होने के, यही असबाब है। दो दुकानें एक साथ हैं, इसकी दुकान ज्यादा चल रही है, मैं बैठा हूं, हसद। अब क्या दुआ कर रही, इसकी ना चले मेरी चले। अरे खुदा रिज़्क़ है वो सबको दे रहा, तुम्हारा रिज़्क़ कोई नहीं खा सकता और किसी का रिज़्क़ तुम नहीं खा सकते। गुज़िश्ता नशीस में हम तफसील से बयान कर चुके, उसके इआदे की जरूरत नहीं। कहने का मकसद क्या है, ये सारे असबाब हैं हसद के, जिससे ये हसद की बीमारी पैदा होती है और फिर ये नेक अमाल को खा लेते। अब आखिरी चीज क्या है, आखिरी चीज है इसका इलाज। हसद की तारीफ आपने सुन ली, हसद के मुतालिक अहदीस सुन ली, हसद का अंजाम सुन लिया, हसद के असबाब सुन लिए, अब इसका इलाज, यही सबसे अहम चीज है। सारी चीजें याद रखो लेकिन ये सबसे बढ़कर याद रखो, इसलिए कि इलाज नहीं होगा तो बीमारी एज इट इज रहेगी, और जब बीमारी रहेगी तो मर्द बढ़ता चला जाएगा, जब इलाज नहीं होगा मर्द बढ़ेगा। इलाज क्या है, बुजुर्गों ने बेहतरीन इलाज बयान किया, जिससे तुम्हें हसद पैदा हो, जिससे हसद पैदा हो, सबसे पहली चीज अस्तगफार का विर शुरू करो, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बिन व अतूबु इलैही, अल्लाह तबारक व तआला इस बीमारी को दूर कर दे। दूसरा इलाज, जिससे हसद पैदा हो दिल में जो कुछ आए उसका उलट करो। क्या मतलब, जब हसद पैदा होगा ना तो दिल में क्या आएगा, मौला इसके पास से नेमत ज़ाइल हो जाए, तुम दुआ करो नहीं मौला इसके पास मौजूद रहे तो और इसको अता करो, हसद दूर हो जाएगा। आप देख ले, जब हसद पैदा होता है यही दिल में ख्याल आएगा इसके पास से चीज छिन जाए, क्यों है इसके पास, मौला इसके पास से छिन जाए। जब ये ख्याल पैदा हो आप समझ लीजिए कि हसद पैदा हो गया दिल में, फौरन दुआ करे नहीं मौला जैसा तूने इसको अता किया और इसको अता कर, तेरे खजाने में कोई कमी नहीं और इसको अता कर दे, अपने कर्म से इसकी मिसल मुझे भी अता कर, तो उसकी ये शान है वो दोनों को अता कर सकता है। जब वो दोनों जहानों को अता कर सकता है तो दो इंसानों को नहीं अता कर सकता। ये है हसद की बीमारी का इलाज। अच्छा हसद से क्या होता है, उसकी दुश्मनी शुरू हो जाती है, नेगेटिव थिंकिंग शुरू हो जाती है। अब हसद पैदा हुआ, कोई आपके सामने तारीफ कर रहा है, नहीं यार वो तो ऐसे ही, अरे ये तो हमारे सामने का था, ये बढ़ गया खामा खाई, ऐसी कोई बात है ये ऐसे बेवकूफ आदमी, ये फिरता रहता था मोहल्ले में, आज इसको इतनी वो मिल गई शोहरत, ये फला जगह चला गया। जैसे ये चीज पैदा हो, और ये चीज शैतान पैदा करता है, फौरन इस्तगफार का भी करें और उसकी तारीफ करें। शैतान कह रहे बुराई करो, आप तारीफ करें, जब आप तारीफ करेंगे वो हसद का जज्बा जो है खत्म हो जाएगा। रहमत मेहरबानी खुलूस ये सब दिल में पैदा होगा, ये है हसद का इलाज। ये सब दिल की बीमारियां हैं, रूहानी बीमारियां हैं, और इनसे बचने का तरीका रूहानियत ही में है और कहीं नहीं, डॉक्टर के पास नहीं है, जाके देख लो किसी डॉक्टर से कोई कैप्सूल मुझे दे दे हसद दूर हो जाए, देगा? कोई टैबलेट दे दे दुश्मनी निकल जाए दिल से, है कोई गोली, है कोई ऐसी चीज? ऐसी कोई चीज नहीं, अगर ऐसी चीज होती तो सबसे पहले जो आजकल ये कर रहे हैं ना इन्हीं को खिलाई दी जाती, सारी बीमारियां खत्म हो जाती, तखरीबकारी खत्म हो जाती, लेकिन ऐसी कोई गोली नहीं। हाँ दूसरी गोली एक दूसरे को मारने के लिए, अल्लाह ताला उससे महफूज रखे। तो इसलिए बुजुर्गों ने इन रूहानी बीमारियों पर तवज्जो दी और उसका इलाज दरियाफ्त किया। अपनी जबान को हमेशा जिक्र इलाही में मशगूल रखो, गीबत से महफूज हो जाओ। जब जबान मसरूफ रहेगी ना गीबत करोगे, टाइम ही नहीं मिले, झूठ बोलने का टाइम ही नहीं, किसी की दिल आजारी का टाइम ही नहीं, किसी को बुरा भला कहने का टाइम ही नहीं, किसी को ना देखो अपने आप को देखो, अपने आप को देखो। मन आरफा नफ्सहू फकद आरफा रब्बहू, जिसने अपने नफ्स को पहचान लिया उसने अपने रब को पहचान लिया। अपने आप को पहचानो मैं क्या हूं, अपने आप को पहचानो। खुद शिनासी और खुदा शिनासी, दो चीजें हैं, खुद शिनासी खुदा शिनासी। खुद शिनासी अपने आप को शिनास करो, पहचानो मैं कौन हूं। खुदा शिनासी खुदा को पहचानो कौन। जब अपने आप को नहीं पहचाना तो खुदा को क्या पहचाना। आप कह नहीं जी हम तो अपने आप को पहचानते हैं। अच्छा पहचानते हैं आप क्या है, हम तो बहुत अच्छे आदमी। हर आदमी यही कहेगा, कोई बुरा कहेगा नहीं जी मैं तो बहुत अच्छा हूं, मैं बहुत काबिल हूं, मैं बहुत जहीन हूं, ये सारी चीजें। अगर अपनी हकीकत समझ ले, हकीकत में अल्लाह रब्बुल आलमीन को समझ ले। हकीकत को हमने समझे ही नहीं हम क्या है। इन बुजुर्गान दीन और औलिया कामिलीन ने अपनी हकीकत को समझा है, अपने तखलीक के मकसद को समझा है, तब जाके उनको ये मकाम मिला। हमने अपने आप को समझे, अपनी हकीकत को नहीं समझे। तो बात यहां से चली कि हसद से बचने का सबसे बेहतरीन इलाज यह है कि जब आपके दिल में यह चीज पैदा हो, जिसकी तरफ से पैदा हो, जिससे आप हसद कर रहे हैं, आप उसकी तारीफ शुरू कर दें, हसद दूर हो जाएगी। अस्तगफार शुरू कर दें, हसद दूर हो जाएगी। इसलिए कि हसद शैतान की तरफ से है, और सबसे पहले जिसने हसद किया वो शैतान। दुनिया में सबसे पहले हसद जब हुआ, बल्कि दुनिया में क्या, दुनिया भी नहीं थी, दुनिया नहीं थी ना। हजरत आदम अलैहि सलाम को अल्लाह तबारक व तआला ने तखलीक किया, उसजुदु ले आदम, आदम को सजदा करो, फसजदु, सब सजदे में गिर गए, इल्ला इबलीस, सिवाय इबलीस शैतान खड़ा रहा। फरिश्तों ने सजदे से सर उठाया, अरे ये तो बैठा इसी तरह, ये तो गया नहीं सजदे में, वो फिर सजदे में गया। दोबारा एक सजदे का हुक्म अल्लाह ने दिया, दूसरा उन्होंने शुक्राने के तौर पे खुद किया, वही दो सजदे नमाज में हो गए। एक हुक्म से है, दूसरा शुक्राने के तौर पे। मौला तेरा करम है, हमने इस मरदूत की तरह नहीं किया, हम बच गए। और जब इससे पूछा, काला मा मना का अल्लाह तस्जुदा इज़ा अमरतुक, तूने क्यों नहीं सजदा किया, किस चीज ने तुझे रोका, कहता है आना खैरुम मिन्हु, मैं इससे बेहतर हूं। हजरत आदम अलैहि सलाम की तरफ इशारा करके, मैं इससे बेहतर हूं। तकब्बुर पैदा हो गया ना, हसद पैदा हो गई, ये मेरे सामने बना और मैं इसको सजदा करूं, मैं तो पहले से इबादत कर रहा हूं, मैं तो 6 लाख क्या 6 करोड़ बरस से इबादत कर रहा हूं, मैं झुकू, मैं जब पैदा हो गई तो जब मैं पैदा होती है तो क्या होता, बकरी मैं करती है तो क्या होता है, गर्दन पे छुरी चल जाती है, समझ गए। तो इस मैं को छुरी से खत्म करो। एक साहब का एक बुजुर्ग के पास दरवाजे पे दस्तक दी, बुजुर्ग ने अंदर से पूछा कौन, इन्होंने कहा मैं। अच्छा अभी मैं बाकी है, चले जा वापस, इस मैं को खत्म कर दे। फिर कुछ दिन के बाद आए, दस्तक दी, कहा कौन, कहा तू ही तू है, दरवाजा खोल दिया, अब आ जा, अब इसकी मैं खत्म हो गई, अपनी मैं को खत्म कर दो, हम कुछ है ही नहीं, मैं किसके लिए है ही नहीं, खत्म, जर्रे नाचीज से भी कमतर हैं, तब जाके मकाम मिले। तो सबसे पहले हसद शैतान ने किया, और शैतान ही हसद पैदा करता है, और वो चाहता है जिस तरह मैं मर्दूद हुआ इन सबको भी मर्दूद कर। इसी हसद ने उसकी 6 लाख या 6 करोड़ बरस की इबादत को जाया किया या नहीं किया, जाया हो गई ना। इसी तरह वो इब्ने आदम यानी इंसान से भी यही चाहता है कि इसके दिल में हसद पैदा करूं और इसकी नेकियां सब में जाया करूं। सरकार ने फरमाया इय्याकुमुल हसद फइन्नहु ताकुलु नारुल हतब, लकड़ी और घास जिस तरह आग इनको खत्म करती है, हसद नेकियों को खत्म करती है, नेक अमाल को खा जाता है। आग मिनटों में खत्म कर देती है, हसद भी मिनटों में नेक अमाल को खत्म करती है। तो इसलिए आज की गुफ्तगू का हासिल क्या है, अगर हमें अपनी नेकियों को बचाना है, नेक अमाल जो किए हैं, अव्वल तो नामे अमाल में नेक अमाल है ही नहीं, सारे गलतियां हैं। एक चीज है ना करना, और एक चीज है बचाना। करना आसान है, बचाना मुश्किल है। नेक अमाल करना आसान है, बचाना मुश्किल है। तो नेक अमाल करो भी और बाद में उसको बचाओ भी, ताकि इन अमाल को बचाकर अल्लाह की बारगाह में ले जाओ, तब कमाल। और अगर करते रहे मिटाते रहे करते रहे मिटाते रहे तो क्या हुआ, जब अल्लाह की बारगाह में पहुंचे तो खाली हाथ, महशर में जो पहुंचे तो अमाल नदारत, महशर में जब पहुंचे तो अमाल नदारत, जिस माल के ताजिर थे वही माल नदारत, जिस माल के ताजिर थे वही माल नदारत, तो फिर क्या फायदा हुआ खाली हाथ खड़े। इसलिए अपनी नेकियों को बचाने के लिए हसद से अपने आप को बचाएं, और इसकी इस बीमारी से बचने का तरीका आपको बता दिया। जब इस पर अमल करेंगे इंशाअल्लाह ताला नबी पाक अलैहिस्सलाम के सदके में अल्लाह तबारक व ताला अपना करम फरमाएगा, उसी के करम से बच सकते हैं। अगर उसका करम नहीं हुआ तो नहीं बच सकते, कोशिश कर सकते हैं, कोशिश करते रहिए, अपने आप को इन चीजों से हत्तुल इम्कान बचाने की कोशिश करते रहिए, और इसका नतीजा अल्लाह पर छोड़ दीजिए। इंशाअल्लाह ताला इस दुनिया में भी कामयाब, आखिरत में भी कामयाब। आइए दुआ करें अल्लाह तबारक व ताला जो कुछ हमने बयान किया इसको अपनी बारगाह में मंजूर मकबूल फरमाए। या अल्लाह इस बयान में किसी किस्म की गलती हो तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदका व तौफीक से माफ़ कर। या अल्लाह जो बीमार है उन्हें शिफाए कामिल अता फरमा, जो किसी परेशानी में मुब्तला है उनकी परेशानियों को दूर कर, जो कर्जदार है उन्हें बारे कर्जे से दोषी फरमा, जो बे औलाद है उन्हें नेक औलाद अता फरमा, जो साहिब औलाद है उनकी औलाद को उनका फरमाबरदार बना। ऐ इलाहु आलमीन ये तमाम हजरात और खवातीन जो दूर दराज मकामात से इस नशिस्त में शिरकत करने के लिए हाजिर हुए, मौला इन सब की हाजिरी को कबूल कर, इन सब पर अपनी रहमतें बरकतें नाज़िल फरमा, इन सब के इल्म में अमल में उम्र में बरकत अता फरमा, इन सब के रोजगार में तरक्की अता फरमा, इन सब की जाहिरी बातनी रूहानी जिस्मानी बीमारियों को परेशानियों को हमेशा हमेशा के लिए दूर कर। ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى ال سيدنا مولانا محمد صلاه دائمه بدوام الملك الحي القيوم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين।